श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभृत्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृच। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इन शब्दों का अर्थ पहले थोड़ा समझ लें। देखिए, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल के स्रोत हैं, अर्थात भगवान ही के कारण सारी इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। अन्यथा देखने की, सोचने की, सुनने की कोई शक्ति किसी भी जीव में स्वराट व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकती है, और वो कार्य कर भी नहीं सकता यदि भगवान उसको ना करें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की इंद्रियां भौतिक हैं। भगवान की इंद्रियां पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं, लेकिन वह सभी की इंद्रियों में शक्ति देते हैं जिसके द्वारा वो भौतिक इंद्रियां भी कार्य करती हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता है, सभी को जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन अनासक्त हैं, क्योंकि वे सारा कार्य अपनी इच्छा मात्र से करते हैं। उन्हें उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं। ये तो हमने कई बार सुना है कि भगवान इन गुणों से परे हैं, लेकिन गुणों के परे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गुण उनके कंट्रोल में नहीं है। वो पूरी तरह से गुणों के स्वामी हैं, कंट्रोलर हैं। अब हम थोड़ा चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को लेकर के, और फिर देखते हैं कि अगर आचार्यों की टीका को भी हम थोड़ा देख सकते हैं। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। ये हमने अभी समझ लिया था कि हमारी इंद्रियां इस समय भौतिक हैं, और उन भौतिक इंद्रियों से हम कुछ कार्य करते हैं, तो उस कार्य करने की शक्ति को हमने सृजित नहीं किया है, वो भी भगवान से आती है। इसलिए कोई भी कार्य अगर व्यक्ति कुछ कर पाता है, तो उसके लिए उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति भगवान से ही आ रही है। और अगर किसी व्यक्ति को हम अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं, तो उससे द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वो शक्ति भी भगवान की ही शक्ति से आ रही है। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वह भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। जैसे मेरी चेतना है, चेतना आत्मा का गुण है, लेकिन वो मन द्वारा प्रकाशित होता है। इच्छा करना, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फीलिंग, विलिंग एंड डिजायरिंग, भावनाएं होना, भाव होना, इच्छा करना, ये सब कुछ आत्मा का गुण है, लेकिन इस जगत में वो मन, बुद्धि इत्यादि के द्वारा प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, क्योंकि वो उससे कवर्ड होता है। जैसे एक बल्ब के ऊपर शीशा होता है, तो रोशनी जो है वो उसके फिलामेंट से आ रही है करंट के कारण, लेकिन जो रोशनी प्रकट हो रही है वो शीशे के माध्यम से इस जगत में प्रकट हो रही है। तो शीशे के कलर के अनुसार, शीशे के रंग के अनुसार इस जगत में वो विभिन्न रंगों की दिखाई पड़ती है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, अर्थात भौतिक तत्वों से वो आच्छादित नहीं रहती। यानी भगवान जब मेरे हृदय में है, या सभी जीवों के हृदय में है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपने स्वरूप को भूल गए। मैं जब इस शरीर में रहता हूँ बद्धावस्था में, तो अपने को भूला रहता हूँ कि मैं हूँ कौन, और अपनी पहचान इस शरीर से करता हूँ, इंद्रियों से करता हूँ। लेकिन भगवान इस शरीर में रहते हुए भी अपनी पहचान इस शरीर से नहीं करते, अपितु वो अपने स्वरूप को भी जानते हैं, और मेरे स्वरूप को, जीव के स्वरूप को भी पूरी तरह से जानते हैं। तो ये इसका अर्थ है, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसी नहीं होती। और इसको तो हमने पिछले श्लोक में भी देख लिया था कि जैसे भगवान की इंद्रियां, भगवान कहीं से भी कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, सारी जगह उनकी आंखें हैं, सारी जगह उनके हाथ हैं, तो उस स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं कि ऐसी इंद्रियों की शक्ति हमारी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो परमेश्वर की इंद्रियां इस प्रकार से आच्छादित नहीं रहती। और एक और मुख्य एक और अर्थ ये भी है कि भाव ये है कि हमारी इंद्रियां भोगोन्मुख हैं, प्रकृति को भोग करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह से लिप्त हैं, लेकिन भगवान की इंद्रियां इस प्रकार से लिप्त नहीं होती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना है यहाँ पे। और उनकी इंद्रियां दिव्य हैं, अर्थात भगवान अपने षड ऐश्वर्यों को ही भोगते हैं, वो जगत के वस्तुओं को नहीं भोगते। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों से नहीं होती, स्पष्ट कर दिया हमने। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं जो कलमश रहित होती हैं। फिर इसको मैं समझाऊंगा कि हमारे इंद्रियों में जो भी कार्य करने की शक्ति है वह भगवान से ही आ रही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान की जो इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं। हमारी इंद्रियां या जो भौतिक इंद्रियां का आवरण हम पर ढका हुआ है, उनकी प्रवृत्ति है भोग की तरफ उन्मुख होना, लेकिन हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान के अंदर इस जगत को भोगने की कोई स्प्रिया नहीं है। तो इस प्रकार से इस अंतर को समझ लेना चाहिए। और हमारी इंद्रियों में हमारी इंद्रियों के ज्ञान को भौतिक आवरण ढकता है। जैसे हम अपने भूतकाल को नहीं जानते, हम अपने भविष्य काल को नहीं जानते। मैं जब बोल रहा हूँ भूतकाल को नहीं जानते, मतलब पिछले जन्म को नहीं जानते, इस जन्म के बारे में हम भूल जाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में तो जानते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारी ज्ञान जो है वो परिच्छिन्न हो जाता है, सीमित होता है। जैसे मान लीजिए मैं इस रूम में बैठा हूँ तो मैं इस रूम के बारे में ही जानता हूँ कुछ हद तक, लेकिन मैं इस दुनिया के सारे कमरों के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन भगवान सभी कमरों के बारे में जानते हैं और सभी जगह उपस्थित भी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो उनका ज्ञान जो है वो देश और काल के द्वारा अपरिच्छिन्न रहता है, यानी कि भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल को जानते हैं और हर जगह क्या हो रहा है उसको भी वो ठीक प्रकार से जानते हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में अपाणिपादो जवनो ग्रहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है, उनके भौतिक नेत्र नहीं होते फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते। तो यानी कि हाँ, वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य, इसकी चर्चा हमने अभी कर ली थी। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। इसके संबंध में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अगर भगवान जानते हैं कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं तो हमारी स्वेच्छा का, फ्री विल का क्या महत्व है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भगवान जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, भगवान जानते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा का उपयोग भविष्य में कैसे करने वाले हैं, लेकिन भगवान उस स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, तो हमारी स्वेच्छा रहती है। और वस्तुतः हमारी स्वेच्छा केवल भगवान के शरणागति स्वीकार करने या न करने में ही होती है, और किसी बात में हमारी स्वेच्छा नहीं है। यानी कि आज अभी मेरी स्वेच्छा इसी बात में है कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं या अपने इंद्रियों को संतुष्ट करूं, और बाकी इसका भौतिक रूप से क्या, भौतिक प्रकृति मुझ पर क्या प्रभाव डालेगी, क्या होने वाला है, उस पर मेरी कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। खैर, यहाँ पे बात हो रही है और अपाणिपादो वाले श्लोक को प्रभुपाद समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगवान के हाथ सब जगह हैं, इसलिए भगवान हमारे सेवा को कहीं से भी स्वीकार कर सकते हैं। और कहीं भी से स्वीकार करने का अर्थ है ये भी समझ लेना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल हर जगह है, पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस का कार्य क्षेत्र सब जगह है, लेकिन वो हमारे जो पत्र है उसको एक रेड बॉक्स के ही द्वारा, जो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है उससे स्वीकार करता है। उसी प्रकार से भगवान सब जगह हैं, लेकिन हमारी सेवा वो अपने विग्रह के द्वारा ही स्वीकार करते हैं, ये समझना चाहिए। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानने वाले हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। इसकी पुष्टि भगवान गीता में करते हैं, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं वर्तमान को जानता हूँ, भविष्य को जानता हूँ, अतीत को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो आप देख सकते हैं भगवान को न जान पाने का कारण यही है कि हमारी इंद्रियां आच्छादित हैं, और जैसे जैसे व्यक्ति गुणातीत होगा उतनी मात्रा में डायरेक्ट भगवान को समझ पाएगा, लेकिन इस समय हमें भगवान को शास्त्र से, भगवद गीता भागवत जैसे शास्त्रों से समझना होगा। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मषग्रस्त नहीं होती। तो ये प्रकृति के द्वारा क्या कल्मष होता है, हमारे ज्ञान को ढक लेता है। हमारा स्वरूप का ज्ञान क्या है, हम लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, क्या होगा आगे, सब कुछ ढक लेता है, और प्रकृति हम पर ये आवरण प्रस्तुत कर देती है जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं और इंद्रिय के भोगों के द्वारा हम संतुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का ज्ञान भगवान पर कभी को कभी नहीं ढकता है। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। इसको तो हमने कई बार समझाया है कि भगवान हमारी तरह भौतिक प्रकृति के द्वारा बाध्य होकर के नहीं प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मषग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं जो शब्द है गुणभोक्तृच, गुणों के स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। ये सब मैं समझता हूँ कि अगर आप श्लोक सुनते आए हैं तो इन शब्दों का अर्थ समझते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, छह प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं, ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है कि परमेश्वर सदैव दिव्य हैं, यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मषग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं उनका अनुभव केवल भौतिक इंद्रिय और भौतिक स्वरूप का होता है और उसी का आरोपण वो भगवान के ऊपर करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जो चीज़ आध्यात्मिक है उसको वो भौतिक मानते हैं और जो चीज़ भौतिक है उसको आध्यात्मिक मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा करते हैं और सोचते हैं कि भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं तो उनका भी जो शरीर है वो भी माया के द्वारा रचित होता है, जबकि भगवान पूरी तरह से चिन्मय होते हैं और जब जगत में आते हैं तो भी हम अपने अज्ञान के कारण भले समझें लेकिन भगवान का जो रूप है वो दिव्य ही रहता है। तो इसलिए इस प्रकार के धारणाओं से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, तभी वो ठीक से भगवान के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कुछ कमेंट्स हम शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भी लेंगे। उसमें वो कहते हैं कि जो भगवान हैं उनकी इंद्रियां बड़ी विशिष्ट हैं और उनका जो इंद्रियों का कार्य करने का जो तरीका है वो भी बड़ा विशिष्ट है। क्या विशिष्टता है कि भगवान उन इंद्रियों से रहित हैं जो उनके स्वरूप से अलग हों। अर्थात समझ गए आप, अर्थात ये है कि उनकी इंद्रियां भी सच्चिदानंद हैं और हमने ब्रह्म संहिता में भी सुना है उनकी कोई भी इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य करने का में सक्षम होती है। वो आँख से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, कान से देख सकते हैं, इस प्रकार की शक्ति भगवान के इंद्रियों में होती है। तो ये चीज़ है। जबकि जीव जब अपने बद्धावस्था में होता है तो उसकी इंद्रियां उसके स्वरूप से अलग होती हैं। दूसरी बात ये है कि भगवान सर्वेंद्रिय विवर्जितम है, अर्थात भगवान पूरी तरह से भौतिक इंद्रियों से रहित हैं, लेकिन भगवान उन इंद्रियों से युक्त हैं जो उनके स्वरूप से बहुत घनिष्ठता से संबंधित हैं। ये बातें थोड़ा समझ लेना चाहिए। दूसरी बात कमेंट है, सर्वभृत और असक्त, यानी कि भगवान सारे असक्तम सर्वभृत चैवा, तो उसमें बता रहे हैं ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि सभी वस्तुओं का आधार भगवान ही हैं, लेकिन भगवान उनसे यानी सर्वभृत हैं, लेकिन वो उनसे संपर्क नहीं करते क्योंकि उन सभी को अपनी इच्छा शक्ति मात्र से धारण करते हैं। दूसरा, वो भौतिक गुणों से रहित हैं, निर्गुण, यहाँ पे शब्द आया है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, अर्थात वो केवल साक्षी मात्र हैं लेकिन उनका कोई भौतिक गुण नहीं होता है। श्वेता शतर उपनिषद से उन्हें कोट करते हुए बोलते हैं, इसका अर्थ है कि वो भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं अपितु वह इन गुणों के कंट्रोलर हैं और उनके नियामक हैं, उनके नियामक हैं, हाँ नियामक हैं, और उनके उनके भोक्ता हैं। और इसमें टीका ये है कि भगवान का जो रूप है वो सत्व रजोगुण के, सत्व रजो तमोगुण के बिना है, और वह अपने षड ऐश्वर्यों को भोगते हैं जैसे कि वीर यश श्री ज्ञान इत्यादि। तो गुण भोक्तृ मतलब भगवान को भौतिक गुणों को भोगने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन जो अपने आध्यात्मिक गुण है, जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है, उनके भोक्ता है, और यहाँ के भौतिक गुणों के वो नियामक हैं।